जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी जना बरोभ गिरी बधारी जय गोपी जना बल यशोदानंदन जज जन रंजन यशोदानंदन जमुना तीर वनचारी जवदाथ माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी जाना बल्लभ गिरिवधारी गोपी जाना बल्लभ गिरिवध यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन बल्लभ यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 जय गौरानीताय 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 जय गौरानीताय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे राधे Prabhupada, Prabhupada. विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य अष्टोत्तर शतवर्षी श्रीमद कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इसका अनुपमर आचार्य श्री डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री ब्रह्म मध्य गौड़ीय गुरु परम्परा की जय। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सर्वगोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से कह श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरव भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। श्रीक्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री गौरनीताय की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की जय। श्री राधा रानी आविर्भाव महामहोत्सव की जय। श्री विशाखाविर्भाव महामहोत्सव की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गुरु प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णा चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदान् सह गण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिभवान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। नमो महाभवन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायके कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशवानुसुते देवी प्रणभामि हरि प्रिये। महाभाव स्वरूपात्मं कृष्ण प्रिया वर्यसी कृष्ण प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वं नमाम्यहम्। वंशा कल्पतरुवश्च कृपासिन्धोभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव तिथि है, राधाष्टमी महामहोत्सव। आज विशाखा देवी के भी आविर्भाव तिथि है। ये अष्टमी तिथि बड़ा प्रिय है भगवान को है। जन्माष्टमी कृष्ण कौन सा दिन आविर्भाव हुए? भाद्र कृष्ण अष्टमी और हरणी शुक्ल अष्टमी। से कृष्ण अष्टमी और आविर्भाव हुए काले हैं और शुक्ल पक्ष की अष्टमी में गोरी है कौन? राधा। आज विशाखा के भी आविर्भाव तिथि है। राधा कौन भी आविर्भाव हुई कौन सा दिन में? बहुला अष्टमी। ये अष्टमी तिथि बड़ा प्रेम है। आप जब भी माला देते गए 108 1008 ये सब आठ बड़ा अच्छे हैं संख्या है। तो इसलिए आज राधारानी के आविर्भाव है तो आविर्भाव के बारे में ही चर्चा करना उचित है। आज कैसे राधारानी के आविर्भाव हुए? ऐसा ही राधारानी तो नित्य गोलकेश्वरी है, नित्य गोला वृंदावन में ही निवास करती है। ऐसा ही गौतमीय तंत्र में वर्णन की गई कि आध्यात्मिक जगत में गोलोक में कैसे राधारानी प्रकट हुई। तो अकेले कृष्ण तो थे रासमंडल में, भगवान जिसे भागवत में कहते कि चतुर्श्लोकी पहला श्लोक अहम एवास्य एवाग्रे नान्यत सत असत पराम। भगवान कहते जो सत असत कुछ भी नहीं था, मैं अकेले ही था, कुछ भी कोई सृष्टि प्रारंभ नहीं हुआ था, कौन था अकेले? कृष्ण ही थे। और जब फिर जब उनको सृष्टि कार्य को आगे बड़ा लीलाओं को आस्वादन करने की इच्छा प्रकट हुई, तभी उनकी तुरंत ही उनकी बाह अंग से कौन इनकी आह्लादनी शक्ति प्रकट हो गई, कौन इनकी स्वरूप शक्ति। वो जीव तत्व में नहीं है, भगवान स्वयं को एक्सपांशन स्वयं शरीर से डायरेक्ट प्रकट हुई है। एक अद्भुत गुण रूप संपन्न स्त्री प्रकट हुई। और क्योंकि ये रासमंडल भगवान जहां पर बैठे हुए थे गोलोक वृंदावन में, वो सतसृंग गिरी जो कि भौतिक जगत में गोवर्धन के नाम से प्रसिद्ध है, गोलोक वृंदावन में उनके नाम अलग है। क्या नाम है? सतसृंग। वही गोवर्धन है लेकिन वहां पर उनके नाम सतसृंग पर्वत। उसी की तरह भगवान एकांत में बैठे हुए थे रासमंडल के, जब उनको रासादी नृत्य की इच्छा हुई भगवत, तो राशेश्वरी प्रकट हो गई लेफ्ट हैंड से साइड से। तो इसलिए रासमंडल में प्रकट होने के कारण उनके नाम पहला अक्षर क्या? रा। रा का अर्थ रासमंडल से प्रकट हुई। धा भगवान के मन में जब इच्छा की इच्छा हुई कि रास नृत्य की पहले तो सजावट होना चाहिए, इसलिए वो अल्लाहनी शक्ति जो कि नारी रूप में थी स्त्री रूप में भागते हुए आसपास में से सुंदर फूल बनाकर माला बनाकर भगवान को पहना दी, भगवान को श्रृंगार कर दी फूल देश फूल में। तो इसलिए प्रकट होकर वो भाग कर गई, धावमान मैंने भाग कर जाकर फूल तोड़ने लगे, तो इसलिए धा शब्द आ गया। क्या कहा गया? रा धा। ऐसे सुखदेव गोस्वामी तो कहे कि अरा ने क्या कि अराधित नूनम भगवान हरि ईश्वर। ये भगवान हरि ईश्वर को आराधन करने में श्रेष्ठ होने के कारण इनके नाम क्या? राधा है। लेकिन इस भौतिक ब्रह्मांड में इस भौतिक जगत में राधा कैसे प्रकट हुई, इसकी भी कहानी कहा जाता है कि वो गोलोक वृंदावन में ही राधा थी। लेकिन ये सिस्टम है कि राधा रानी के परमिशन इसके आस्ते आस्ते राधा रानी प्रकट हुई, राधा रानी से फिर सारे गोपियां प्रकट हो गए, क्योंकि एक ही अकेले ही लड़ा आस्वादन नहीं होता है, सारे परिकर भगवान भी अपने को विस्तार करने लगे, द्वादश गोपाल और अन्य गोपाल से प्रकट हो गए, पूरे गोलोक वृंदावन फिर गोपियों में भर गए हैं तभी। लेकिन सिस्टम था कि राधारानी ही सभी गोपियों में उत्तम है और सभी गोपियों के स्वत वही है, इसलिए कोई भी कृष्ण के साथ में मिलना चाहता है कृष्ण के साथ में व कृष्ण को आस्वादन कर रस आस्वादन कराना चाहते हैं तो परमिशन लेना चाहिए किससे? राधारानी से। राधारानी के बिना अनुमति से कोई कृष्ण से मिलता तो राधा बिगड़ती है। इसलिए एक गोपी थी उसके नाम था बिरजा, बिरजा गोपी। तो एक दिन एकांत राधारण के बिना नॉलेज में कृष्ण के साथ आस्वादन कर रही थी अकेले, तो इसी को देखकर भगवान को जब मैसेज मिला, नेसरी राधारण को मैसेज मिला तो तुरंत ही क्रोधित होकर भागने लगी, ये गोपी कौन है जो कि मेरे को सरपस करके आगे जाना चाहता है, है? तो इसलिए ऐसे राधारण ने तो सारी गोपियों को कृष्ण में मिलने में सुजोग देती है, लेकिन जो राधारण को क्रॉस करके आगे बढ़ता है तो उसके लिए राधारण को क्रोध आती है। इसलिए राधारण ने जब उस स्थान पर पहुंचे जहां कृष्ण और बिरजा मिल रहे थे, तो बिरजा ने नदी के रूप में बहुत भयभीत होकर किससे? राधा से। अब भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए, छुप गए, अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन वो बिरजा गोपी बिरजा नदी के रूप में भाई वही बिरजादि कारणारण्य वसागर के रूप में पूरे आध्यात्मिक चारों साइड में बह रही है। तो इसलिए राधारण देखे हुए कृष्ण है नहीं, इसलिए कहा था कि जो कृष्ण को फिर ढूंढते हुए भगवान ने राधारणी ने एक सुंदर दीप की रचना की, वो है नवदीप, नौ दीपों को बनाए, इसलिए वो कहानी अलग है कि मैं बोलने से फिर और अलग हो जाएगा। तो इसलिए नवदीप की जो सृष्टि कौन की है, राधारणी, इसीलिए वृंदावन से अभिन्न है, और सबको तो भगवान सृष्टि किया लेकिन नवदीप को राधारणी स्वयं सृष्टि की है, नवदीप मंडल, इसलिए भगवान को इतनी प्रिय है। भगवान स्वयं उसी धाम में गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण होकर उसको प्रकाश किया कि ये वृंदावन से अभिन्न है, ये राधारणी के द्वारा प्रकट की गई है। तो इस प्रकार लेकिन बिरजा गोपी के प्रति ऐसा ही आचरण को देखकर उनको थोड़ा सहन नहीं हुआ, किसको, श्रीराम को। वो कुंज में जब बैठी हुई थी बिरजा, मैंने कृष्ण जब कुंज में बिरजा गोपी के साथ था थे, तो गार्ड के रूप में श्रीराम को बैठा दिए थे, राधारण के बड़े भाई श्रीराम को गेट में बैठा दिए थे कि अंदर किसको छोड़ना नहीं, लेकिन राधारण जो आ गए तो रुक नहीं पाए, तो बोले कि मना है भगवान, तुमको कहीं अंदर नहीं जा सकते हैं। राधारण के मरे रुकना चाहती हो, आए तो तुम मेरे बड़े भाई होकर मेरा हित नहीं चाहती हो, और क्रोधित होकर तुम राक्षस की तरफ हो, मैंने और कुछ कई लड़ा है जो कि आस्ते आस्ते श्रीराम ने कृष्ण की पक्ष लेने लगा, तो कहे कि तुम तो राक्षस की तरफ, जैसे राक्षस लोग ने देवता माने भगवान विष्णु की पक्ष नहीं लेते हैं और अन्य देवताओं के पक्ष से इंद्रिय तृप्ति के साधन प्राप्त करना चाहते, तू इस प्रकार राधा कृष्ण में अंतर देता है, देखता है, तू मेरे से भी, मेरे को कृष्ण से अभिन्न देखता है, तुम जहां सोचता कि मेरे से तुम्हारा कृष्ण के प्रति अधिक प्रेम है, इसलिए तू राक्षस की वृत्ति करता देखा रहा है, तुझे अभिशाप देता हूं, तुम राक्षस चोरी में चले जाओ। इसी राधारानी के अभिशाप से श्रीराम शंखचूड के रूप में आया है, राक्षस के रूप में, लेकिन श्रीराम ने भी छोड़े नहीं, कह के अच्छा तुझे इतनी अहंकार हो गई, तू मेरे छोटे बहन होकर तुझ भी इतने आए, तेरे मन में गर्व है कि तू दूसरे गोपियों को कृष्ण के साथ मिलना नहीं चाहता, तुम एकले से वो आनंद लेना चाहती हो, हाँ मैं भी अभिशाप देखेंगे, तू इस गौरव से पतित हो जाओगे, कहां जाओगे, इस मर्त्य जगत में आकर जन्म लोगे वृषभानु कृष्ण की पुत्री के रूप में, और कृष्ण के साथ में ब्रज में लड़ाना तो हो रहा, कुछ दिन भगवान ने दस साल और आठ महीने तक रहेंगे कहा ब्रज में, लेकिन इसके प्राण भगवान मथुरा द्वारका में चले जाएंगे तो सौ साल विच्छेद दुख सहन करोगे। तो इसलिए आचार्य लोग कहते हैं ब्रह्मवैत पुराण में कहानी वर्णन है, जैसे वो श्रीराम की एक प्रकार दोनों ही रो रहे थे, भगवान पहुंच फिर तभी भगवान आशीर्वाद को मैंने प्रकट हो गए, बोले अच्छा क्या हो गया क्या हो गया, तो वैसे सब तो वो उन्हीं की इच्छा से हो रहा है क्योंकि इनको आना था इसी धरा में आकर भूमलला में भी प्रकट करना है, बद्ध जीवन को उद्धार करने के लिए भगवान किस लिए आते हैं जगत में, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सो पार्षद शिव धाम सह अवतरी, कई कारण है लेकिन एक कारण है कि भगवान आते हैं, हमें अपने ड्रामा पार्टी को लेकर यहां पर आते हैं, ड्रामा करते हैं और ड्रामा करके बद्ध जीवन को आकर्षण करते हैं, तुम्हारा जो इच्छा है सब पूर्ण हो जाएगा, तुम मेरे ऐसे ही खेल कसरत करना चाहते हो, मेरे साथ में ऐसे ही खेल कसरत करोगे कहा गोलोक वृंदावन में, तुम कितने डांस सीखते हो, मेरे से कोई ज्यादा नाचने वाला नहीं है, मेरे साथ में नाचना चाहते तो वही आओ, ऐसे भगवान ने सभी लड़ाकों को प्रकट किए हैं, सभी भगवान इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम है, सारा ऐश्वर्य पूर्ण है, सारे लड़ाकों को प्रकट करके बद्ध जीव को आकर्षित करते हैं। तो इसलिए जब भगवान ने कहे कि ठीक है चिंता मत करो होगा, लेकिन राधारानी ने तो अभिशाप तो परस्पर को दे दिया, अब जाना पड़ेगा, ये शंखचूड़ बनना पड़ेगा, जाओ तुम सुदाम शंखचूड़ बनो और फिर तुम थोड़ा दिन में वापस आ जाओगे, चिंता मत करो, भौतिक ब्रह्मांड के कितना दिन रहोगे, लड़ा में भाग लेना ही उचित है। राधारानी को सांत्वना दिया, राधारानी कहे कि मैं कैसे जा सकती, कैसे रहूंगी, मैंने भौतिक जगत में जाकर मैं किसी की मुख नहीं देख सकती, सबसे पहले यदि मैं किसी की मुख देखूंगा तो आपकी ही मुख दर्शन करूंगा, मैं भौतिक ब्रह्मांड में जाऊंगी तो ये जमुना नदी भी वहां जाएगी, गोवर्धन पर्वत भी वहां जाएगी, नहीं तो मैं वहां नहीं जा सकती हूं। इसलिए भगवान ने ये दोनों को भी अवतरण कराया, किसको, गिरिराज गोवर्धन को, और जो शतसिंह के नाम से गोलोक वृंदावन में जाना जाता है, यहां पर गिरिराज गोवर्धन के रूप में, और जमुना नदी भी यहां पर पधारे। इसी प्रकार ये बातचीत गोलोक वृंदावन में संपन्न हो गई, और राधारानी किस प्रकार एक धराधाम में जन्म ली, जन्मस्थान आप लोग कहाँ है, राधारानी के जन्मस्थान कौन जानते हैं, रावण, लेकिन वर्षा आ जाओगे तो ब्रजवासी लोग कहेंगे ये भी जन्मस्थान है, पंडित लोग आपको बोलेंगे क्योंकि वृषभानु सरोवर है, यहां पर ही है गोलोक मैंने कमल के फूल के ऊपर वृषभानु जी ने राधा रानी को प्राप्त किया था। स्थान में देखा देंगे कहां पर राधारानी प्रकट हुई थी। अवश्य घटना अन्य अन्य कल्पों में संघटित होता है, लेकिन मुख्य रूप में जो राधारानी के प्रकट की कहानी, तीन चार अलग अलग कहानी सुनाई पड़ता है। व्रत में विशेष रूप में जो प्रसिद्ध है, जैसे रावण में आप लोग कह रहे कि प्रसिद्ध है कि वृषभानु जी प्रकट, में शास्त्र में कहा गया कि पुराण में वर्णन ऐसे ही मिलता है कि वृषभानु स्वयं सूर्यसी सूर्यदेव है, स्वयं सूर्यदेव राधारानी की को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या किए थे, और उसके तपस्या में प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने इनको कहे कि आप जाकर मर्त्य भूमि में वृषभानु के रूप में जन्म लो। कहा रावण में बरसाना ही उनके आदि स्थान था, वहां से फिर उन्होंने जो भगवान जिस प्रकार नंदग्राम में भगवान ने नंद महाराज की भी आदि स्थान, उनके पूर्व पुरुष वहीं रहते थे, लेकिन कभी कभी वो ब्रज का अर्थ ब्रज शब्द का अर्थ ही भ्रमण करना, एक स्थान में वो लोग स्थिर नहीं रहते हैं, गाय चराने वाले हैं, इसलिए गाय को घास चराने के घास जहां मिलता थोड़े दिन कुछ जगह रहते फिर अलग जगह चेंज करते, सही कुछ साल कई जगह परिवर्तन करते रहते हैं। जैसे नंद महाराज की नंदगांव तो था, लेकिन फार में गोकुल आए, गोकुल में राक्षस लोगों को उत्पाद किया, तो फिर वहां से छठीकरा में आके कुछ दिन रहे, छठीकरा से फिर बरसाना वापस गए। इसी प्रकार भी जो वृषभानु जी उनकी ओरिजिनल स्थान है बरसाना, लेकिन वहां से उन्होंने जब नंद महाराज गोकुल में आ गए वहां पर रावण में रहने लगे, तो इसलिए रावण में जब वृषभानु जी ने स्थित थे रावण से फिर उन्होंने वहां गए बसंती राधा राधा जो की जब कृष्ण छठीकरा में थे राधा रानी की जो पिता के वो रहे बसंती, बसंती एक गांव आता है राधा कुंड की पहले वहीं बसंती स्थापना करके वृषभानु रहते थे, और राधा कृष्ण के मिलन राल में होता था। राल इसलिए ऐसे स्थान है जहां पर राधा कृष्ण की पहले मिलन हुई थी, कि मैंने किशोर अवस्था में सबसे पहला मिलन की एक स्थली राल में है। तो इसी प्रकार जो राल में थे विशेष रूप में प्रसिद्ध है कि राल ही राधा रानी की जन्मस्थानी, तो वृषभानु वहीं पर उनके पिताजी थे महाभानु, उनके पांच पुत्र थे, मैं उनके पिताजी का नाम तो वृषभानु के यहां चार भाई थे, लेकिन ये मझले भाई थे, जैसे नंद बाबा भी मझले पुत्र है, किनके परजन्य के पांच पुत्र थे, तो उनकी बीच वाले पुत्र थे, इस प्रकार बीच वाले पुत्र थे, लेकिन योग्यता के आधार पर ये भी राज पद में अधिष्ठित थे, वृषभानु भी राजा थे, जैसे नंद महाराज थे ये भी राजा थे। तभी एक दिन वृषभानु जी ने, वृषभानु और इनकी पत्नी थी कीर्तिदा, कीर्तिदा की जो माता पिता है बिंदु और मुखरा, ये दो गोपी उनकी कन्या थी कीर्तिदा, कीर्तिदा वृषभानु की परिणामी हुआ, लेकिन कई साल बीतने पर भी उन्हों से कोई संतान नहीं हो रहा था। कुछ साल के बाद में एक पुत्र संतान हुआ, उसके नाम रखा गया श्रीराम, लेकिन पुत्री ने पुत्री की कामना करके उन्होंने फिर सोचा कि कोई पुत्री हमें भी प्राप्त हो जाए। तो वृषभानु जी ने एक बार जमुना में स्नान कर रहे थे, स्नान करके ही करने के बाद जब सूर्य को जल तर्पण कर रहे थे, ध्यानस्थ थे, उस समय देख रहे थे उनके शरीर को कुछ स्पर्श कर रहा है, तो उनके हठात देखे कि एक हजारों पाखुड़ों में खेले हुए कमल के फूल आकर भगवान को स्पर्श, नहीं उनके शरीर को स्पर्श कर रहा, उस कमल के बीच में एक अंगुष्ठ प्रमाण के कन्या है, तप्त कांचन गौरांगी है, पिघले हुए सोना के समान झलकते हुए अत्यंत सुंदर कांति वाली एक छोटा सा कन्या है, लेकिन इसको देखकर वो बड़े आश्चर्यचकित हुए, समझ गए कि कोई दैवी शक्ति संपन्न कन्या है, और उन्हें इनको अपने कमल फूल के साथ में लाकर अपने स्त्री को कीर्तिदा को दिखाए। कीर्तिदा ने कहने लगी कि यदि प्रकृति में भगवान की हमारे प्रति कृपा है तो अवश्य कन्या, ये देवी संपन्न कन्या यदि प्रकृति में एक बालिका के रूप धारण कर लेगे तो हम इसके लालन पालन करेंगे। जब इनकी ऐसे ही कहने लगे, इनकी इच्छा को जानते हुए तुरंत ही वो कन्या अपने को साधारण कन्या की तरफ बच्चे के रूप में प्रकटित हो गई, तो बड़े प्रसन्न होकर इनके लालन पालन किए। कौन इसलिए कहते कि वृषभानु दधि नवससि, लेके साधारण जो बच्ची होता है तो उसे क्या बच्चा होता है तो क्या किसकी कब्ज का, जैसे सचिनंदन जसोदा दुलाल माता के नाम लिया जाता है सचिनंदन गौरहरि, लेकिन यहां पर कहते वृषभानु दधि नव, वृषभानु रूपी सागर से प्रकट हुई। कौन क्योंकि अजनय संभूता है राधा, इनको डायरेक्ट उन्होंने जमुना के जल से प्राप्त करके लेके आए थे। तो वो कहानी राधारानी कैसे प्रकट हुई, ज्यादा ब्रज में ब्रजवासी इसको विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा आचार्य रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने उन्होंने अपने ग्रंथ दो नाटक जो लिखे हैं, विदग्ध माधव ललित माधव, ललित माधव नाटक के प्रारंभ से राधारानी के आविर्भाव के बारे में भी वर्णन करते हैं पौर्णमासी की मुख से। पौर्णमासी जोगमाया देवी वो बातचीत करती है गार्गी और नांदीमुखी, नांदीमुखी संदीपनी इनकी नातनी है, किसकी, पौर्णमासी है संदीपनी मुनि की माँ। संदीपनी मुनि के दो लड़के हैं, एक है मधुमंगल और दो एक बेटा एक बेटी, बेटा है मधुमंगल बेटी है नांदीमुखी। तो इसलिए वो दोनों आते हैं, कौन पौर्णमासी स्टेज में नाटक है, पौर्णमासी आती है और नांदीमुखी आती है, उस दूसरे साइड में गर्ग मुनि की पुत्री गार्गी आती है। तभी उस पौर्णमासी ने कहती कि मेरे ऐसा एक बहुत बड़ा चिंता है, मैं क्या राधा की शादी में कैसे कराऊं। तो ऐसे बातचीत चल रहा था, तो उसी प्रसंग में राधा के आविर्भाव प्रसंग भी पूर्णवास ने कहने लगे कि ये राधा रानी प्रकृत में इस गांधर्वी का उसके नाम इसलिए क्योंकि ने इनके नाम है और ये विंध्याचल की पुत्री है, हैं? किसकी पुत्री है, विंध्याचल की पुत्री है। तो उसके भी विश्वास नहीं है, गार्गी कहे कि मेरे पिताजी गर्गमुनि वो तो सर्वज्ञ है सर्वशास्त्रविद है, वो कहे कि ये वृषभानु के औरत से कीर्तिदा से जन्म हुई है। गर्गमुनि मेरे पिताजी तो त्रिकाल के, वो कहे तुम कैसे बोल रही हो ये विंध्याचल की पुत्री है। तभी पूर्णवासी कहते धैर्य धारण करो, मैं भी जो सुनी हूं ये मेरे गुरु नारद जी से सुना हूं, नारद जी की अथॉरिटी है, नारद जी से ये बात को सुना हूं, मैं अपने स्पेकुलेशन नहीं बोल रहा हूं, नारद जी ने भी ये मुझे सुनाया कि प्रकृत में है तो राधा वृषभान की ओर से कीर्तिता के गर्भ में आई, लेकिन जिस प्रकार बलराम जी को ट्रांसफर कर दी जोगमाया देवी ने, किसकी गर्भ से, देवकी की गर्भ से फिर रोहिणी की गर्भ में, इसी प्रकार ये मैंने जोगमाया देवी ने राधा को फिर ये कीर्तिता की गर्भ से ट्रांसफर कर दी विंध्याचल की पत्नी के गर्भ में, ऐसा क्यों किए, गर्गी ने पूछी। तो उन्होंने कहे कि इसका रहस्य है, हैं? क्योंकि विंध्याचल पर्वत में कई हजार साल तक कठोर तपस्या किया, तपस्या करके कहा कि मेरे को तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जो उसके सामने प्रकट हुए कहे कि क्या वर चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसा कन्या चाहिए जिसकी पति महादेव को जल करने वाले होगा। तो बोले ऐसा क्यों मांगा, तो तपस्या को ये पुत्र चाहता, ये पुत्री क्यों चाहा, तो कहे कि क्योंकि हिमालय की एक पुत्री थी, है कौन, पार्वती, हिमालय पर्वत है, स्थावरान हिमालय भगवान ने गीता में कहा, तो हिमालय पर्वत है तो हिमालय की पुत्री है पार्वती, और पार्वती का पति कौन है महादेव, इसलिए हिमालय को बड़ा गर्व है, मेरा जो जानता है मेरे को ज्वानी है जानता है वह बड़े महादेव पर जाना पूरा गर्व है, तो इसलिए इसको सहन नहीं हुआ, वो पर्वत जाति होने के कारण उसको भी ईर्षा हो गया, किसको, विंध्याचल, विंध्याचल भी कठोर तपस्या करके कहा कि मेरे को भी ऐसे पुत्री चाहिए जो कि महादेव को, जिसकी पति महादेव को भी जय करने वाला होगा। बोला अच्छा ऐसा ही हुआ, मैंने तपस्या करके ऐसा इच्छा प्रकट की, तो ब्रह्मा जी ने कहे कि जो कहे कि मेरे को पुत्री चाहिए जो कि महादेव को विजय, ब्रह्मा तो उस समय सोचे नहीं थे क्योंकि कठोर तपस्या क्या था, इसलिए तथास्तु कर दिया, लेकिन बाप में सोचे अरे ये क्या बर मांगा, मैं तथास्तु कर दिया, कहा कि महाद इसकी जो लड़की ऐसा ही होगा, लड़की की जो जिसको शादी करेगा उसका जामाता होगा, महादेव को भी विजय करेगा, ये महादेव को जय करने वाला है संसार में कौन होता है, ये तो एकमात्र कृष्ण ही महादेव को जय कर सकते हैं, जो कृष्ण को यदि ये जामाते रूप में प्राप्त करना चाहता तो फिर राधा रानी को उसको पुत्री के रूप में देना पड़ेगा, ये क्या मैं कर दिया, लेकिन फिर ब्रह्मा जी कहे अभी इसके लिए मुझे कष्ट उठाना पड़े, ब्रह्मा जी को फिर तपस्या करना पड़ा, ब्रह्मा जी का वो उसको तो वरदान दिया लेकिन स्वयं तपस्या में बैठ गए, और कई हजार तपस्या करके करने के बाद तो उनके सामने कौन प्रकट हुआ, कृष्ण प्रकट हुए, कृष्ण कहे कि क्या चाहते हो ना, मुझे एक पुत्री मैंने राधा को ही पुत्र मैंने ये विंध्याचल की पुत्री जैसे बनेगा वरदान दे दो, क्योंकि मैं इसको तथास्तु कर दिया अभी मेरे वचन झूठा हो जाएगा नहीं तो। तो सारे सिचुएशन को समझ कर राधारानी को भी कह के राधारानी को पूछना पड़ेगा, राधारानी भी प्रसन्न होकर कह दे ठीक है, क्योंकि वो ब्रह्मानु स्वयं सूर्य है, वो भी पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या किया था, चलो वो मैं लीलाभूमि होगा लेकिन विंध्याचल भी चाहते कि उसकी पुत्री बन जाऊं, तो इसीलिए पूर्णमास ने कही कि जोगमाया ने ब्रह्मान की गर्भ से इनको फिर सॉरी ब्रह्मान की पत्नी कीर्तिता की गर्भ से फिर विंध्याचल की पत्नी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया था। लेकिन तो फिर वो ब्रह्मान के पुत्र पुत्री में कैसे आया, बोले थोड़ा धैर्य धारण कर बोलता हूं आस्ते आस्ते, तो कहे कि देखो कंस ने जब ने जो एकांग जो दुर्गा देवी को जो मारने के लिए देवकी की अष्टम गर्भ की कन्या समझकर वो उसको मारने के लिए पत्थर के ऊपर क्या पटक रहे थे, तो हाथ में फिसल गए और स्वर्ग में कहने लगे कंस तू मुझे मारना चाहता है, तुझे मारने वाला तो कोई ना कहीं जन्मा ले चुका है, लेकिन सुनो ये धरा पर केवल कृष्ण नहीं मेरे से भी अधिक सौंदर्यशालिनी अधिक गुणशालिनी और कन्याएं आठ महाशक्ति दैवी शक्ति संपन्न कन्या ये संसार में प्रकट हो चुके हैं, अष्ट गोपी के नाम से बाद में प्रसिद्ध होंगे, ये सारे कहीं ना कहीं प्रकट हो चुके हैं और ये अष्ट गोपियों को जो शादी कर लेगा अष्ट कन्या को वो महापद को भी विजय करने वाला है, उसको कोई विजय नहीं कर सकता, यदि ये कन्या को कोई शादी जो शादी कर लेगा वो महादेव विजयी बनेगा। इसको सुनकर कंस ने सोचा कि ये कन्याओं को तो पकड़ना पड़ेगा, मेरे को लाकर इनकी पति बनना पड़ेगा, इसलिए कंस ने पुतना को कहा कि देखो पुतना जितने मेल चाइल्ड इनको मार डालना और फीमेल चाइल्ड से पकड़ के मेरे पास ले आना, इसलिए विंध्याचल की पत्नी की गर्भ जो ये आठ कन्या मैंने ये आठों कन्या प्रकृति में वही जन्म लिए थे विंध्याचल की गर्भ से पत्नी की कन्या के रूप में, तो वहां पर जब उनके नाम माने यज्ञ हो रहे थे, नाम माने जन्म होने के बाद नामकरण ऐसे करने के लिए यज्ञ चल रहा था, एकत्र था पुतना आकाश में देखी कन्या है सुंदर कन्या है, तुरंत उतरी हटात और इनको पकड़ के फिर आकाश में उड़ गए, उसको सारे कड़ा आती है जादू सब जानती है, तो कड़ा जादू जाते तो ऊपर उड़ गई, तो विंध्याचल ने हाहाकार करने लगा मेरी पुत्री को ले गया ले गया, पंडितों कहते आप सब मंत्र उच्चारण करो जैसे मंत्र के प्रभाव से इसका शक्ति क्षीण हो जाएगी, किसकी राक्षस की, ये राक्षसी जैसे मर के गिर जाएगी, ऐसे मंत्र उच्चारण करो, तो पुरोहित लोगों ने राक्षस मारण मंत्र उच्चारण करने लगे, वो आकाश में उसके शरीर कंपने लगे, किसकी पुतना, लेकिन ऐसे तो भाग के जा रही थी आकाश में, हाथ से सब कन्याएं गिरने लगे, गिर गए बच्चे से ऐसे बच गए, तो ऊपर के कुंडीन नगर के पास में वो रुक्मणी गिर गई थी मैंने वो जो चंद्रावली बात में रुक्मणी, तो इसलिए भीष्मक में इनको उठाकर उनको लालन पालन किए, और जो भगवान ने जोगमाया के निर्देशन में उसी विंध्याचल पर्वत और गोवर्धन में रहने वाले जो विशेष जाम्बवान, तो उन्होंने फिर वहां से उठा के ले आए थे इसको, वैसे कुंडीन नगर से उठाकर फिर इसकी दे दिया था बारुण ने गोप को जो की उनकी पुत्र सॉरी महाराज चंद्रभान को दे दी थी, कह कि ये तुम्हारा पुत्री है, इस प्रकार वो चंद्रभान की पुत्री बन गई चंद्रावली, और ये राधा तो जमुना में गिर गई थी और मैं इसको उठाकर मुखरा को दे दिया, कि मुखरा देखो ये तुम्हारा पुत्री की पुत्री है, तुम्हारा नातनी है, तुम्हारा पुत्री है कि दे दो इसको लालन पालन करने के लिए, तो इसी प्रकार जमुना से उठाकर मैं दी थी राधा को, और वो नहीं सॉरी किन को दे दी मुखरा को, मुखरा कीर्तिदा को दे दी, और इस प्रकार उनकी आविर्भाव हो गया, ब्रह्मानु की पुत्री के रूप में प्रसिद्ध हो गई, और विशाखा तो भी ऐसे ही जमुना में गिर गई थी, उसको उठा जटला ने उठाकर लालन पालन करने लगा, ऐसे ही गोपियां इधर उधर गिर गए थे सब, जब पुतना के हाथ से मैं छुड़ाकर इनको सब अलग अलग घर जाकर दे दिया। ये कहानी कौन कह रही, पूर्णमासी देवी कह रही, तो इसी प्रकार राधारण के आविर्भाव के बारे में रूप गोस्वामी अपने मतामत को व्यक्त करते हैं, लेकिन जो रूप गोस्वामी कहते हैं वो झूठा नहीं है, हो सकता कि इस कल्प में नहीं है तो अन्य किसी कल्प में घटना हुई होगी। तीसरे कहानी आता है कि कभी प्रकृति में ब्रह्मानु कीर्तिदा की जो कई दिनों से संतान नहीं हो रहा था मैंने कोई, तो उन्होंने बड़े दुखी थे और इनको दुखी देखकर कीर्तिदा ने उपदेश दिया ब्रह्मानु को कि देखो तुम कात्यायनी की पूजा करो, कात्यायनी महामारे महादेवी ने अधीश्वरी ये सभी की इच्छा पूर्ण करने वाली जैसे गोपियां लोगों ने प्रार्थना किए, महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोपो सुतं देविं पति में कुरुते मम, वो प्रार्थना करते। तो ये वो कहे कि नहीं, हमें भी माँ जोगिनी की पूजा, ये कात्यायन की पूजा करके संतान की कामना करना चाहिए। तुम जाओ प्रत्येक दिन कात्यायनी वस्त्र अगस्त महीना में मार्गशीर महीना में स्नान करो, जमुना में स्नान करके कात्यायनी देवी की पूजा करते रहो, वो प्रसन्न हो जाएगी तो आपको पुत्री प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए अपने पत्नी की बात को सुनकर वृषभानुज ने कात्यायनी देवी की पूजन करने लगे। इन कई साल से पूजन करने के बाद कात्यायनी एक दिन आकाश के मने शून्य वाणी के माध्यम से कहने लगे कि अरे वत्स, हरिनाम के उच्चारण के बिना, हरे हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण के बिना, काया शुद्धि किए बिना कोई मंत्र का सफलता हासिल नहीं कर सकते, मंत्र सिद्धि नहीं होता है। इसलिए तुम जा जमुना नदी के किनारे क्रतुमुनि को मिलो, क्रतुमुनि आश्रम बनाकर रहते, उनसे परामर्श लो, उनसे हरे कृष्ण मंत्र दीक्षा ग्रहण करके उस मंत्र को जपो। जब तुम शुद्ध हो जाओगे मैं तुम्हारे सामने प्रकट होकर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। शून्य वाणी को सुनकर फिर आप वृषभानुज ने गए, क्योंकि ब्रीफली कह रहा हूं, समय बहुत सीमित है, ये तो विस्तार से कहने बहुत लंबा हो जाएगा और समय सीमित है। तो इसलिए फिर वृषभानुज ने क्रतुमुनि के आश्रम में गए, क्रतुमुनि ने उनसे हरिनाम दीक्षा प्राप्त किए, नम्रता से उनको गुरु रूप में स्वीकार करके उनसे हरिनाम दीक्षा ली, जैसे आप लोग सो दीक्षा लेते हो, और जपने लगे क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ऐसे कई साथ हरे प्रत्येक दिन जमुना स्नान और हरे कृष्ण मंत्र जपने के प्रांत, तभी एक दिन कात्यायनी देवी प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गई, कह कि तुम्हारा भक्ति में प्रसन्न हो, तुम मेरे आदेश पालन किए हो, अभी क्या चाहते हो बाबो। तो कह कि आपको पता है मेरा इच्छा क्या, आप स्वयं जगमान देवी, आपको सबके अंदर की बात पता है, कह कि ठीक है भाई बक्स तुम्हारा इच्छा पूर्ण होगा, कहकर उनके बक्स दे दी है, एक गोल्डन बक्स, उसके अंदर में भी एक डिंबाकृति एक गोल्डन वस्तु कुछ था बक्स के अंदर, क्योंकि इसको ले जाओ, इसी से ही तुम्हारा अभिष्ट पूर्ण हो जाएगा, समय आने पर तुम्हारा अभिष्ट पूर्ण होगा। इसलिए वृषभानुज ने उस बक्स को लाकर अपनी पत्नी कीर्तिदा को दे दिए, और कई महीने के बाद उसी जो डिंबाकृति जो वस्तु था बक्स के अंदर, उसी से ही कौन प्रकट हुई, राधारानी प्रकट हुई। तो इसलिए ये तीसरे प्रकार की कथा आती है, ये सब सारे पुराण में वर्णन है, अन्य अन्य पुराण में है, तो इसलिए सब झूठे नहीं है, अन्य अन्य कल्पों में ये सब घटना हुई है। लेकिन आप जैसे सुने कि राधारानी इसी वरदान के साथ आध्यात्मिक जगत में प्रकट हुई थी इस धरा पर, कि मैं प्रकट होकर किसी को देखूंगा नहीं है संसार में, सबसे पहले किसको देखूंगा, आपको ही दर्शन करूंगा। तो इसलिए जो वृषभानुज ने इनको जो जन्म हुए बा उनको कमर से उठा के लाए बा कृतराय की गर्भ जन्म हुए, तो जन्म से ही आंधी थी, आंधी जैसे थी, आंख बंद आंख नहीं खुलती थी। तो कहे कि इतना सुंदर कन्या है लेकिन क्या है, आंधी है, बड़े दुखी हो रहे थे दोनों। नारद मुनि ने भी देखे कि भगवान श्री कृष्ण नंद भवन में आविर्भाव हो गए, उनको तो पता था इस सबको नंद भवन में आएंगे, नंद की लाला के रूप में लड़ा करेंगे। जब नंदग्राम में आकर गोकुल में आकर देखे किसको, कृष्ण को, तो सोचे कि जो कृष्ण आविर्भाव हो गए उनकी जो कि लीला में बा उनके नित्या प्रेयसी के रूप में राधा अवश्य कहीं ना कहीं आसपास में प्रकट हो गई होगी। तो नारद ने उसके रिसर्च करने लगे, सबकी घर घर में पूछते थे, तुम्हारे घर में कोई पुत्र या कन्या की आविर्भाव हुआ कि नहीं, जन्म हुआ कि नहीं पूछते थे। ऐसे पूछते 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 जो पहुंच गए उधर रावल में, वृषभानु जी के पास में पहुंचे, वृषभानु जी को पूछे तुम्हारा घर में कुछ बच्चे, तो कहे हाँ हमारा पुत्र को, अपने पुत्र को, बड़ा लड़का को ले आए, किसको, सुदाम को। तो उसके रंग लक्षण से स्वरूप को देखकर नारद जी समझ गए ये तो भगवान श्री कृष्ण की नित्य सखा है, ये स्वरूप शक्ति है, जीव शक्ति नहीं है, कहे कि ये बड़ा लड़का तो बड़े भाग्यवान है, ये भगवान श्री कृष्ण के नित्य सखा है, और उनको बहुत आशीर्वाद देकर कहे कि आपके घर में और कोई बच्चे बच्चे कोई है ना क्या, क्योंकि हाँ नारद जी और एक नए बच्ची हमारा जन्म हुई है लेकिन वो अंधी है, जन्म से यहाँ पर आई है तो अंदर में देखिए झूला में है, ये कहकर नारद जी बड़े आग्रह से चले गए अंदर और देखिए कि अंत कक्षा में झूला में झूल रही है एक बट्टी। लेकिन नारद जी ने उनकी शोभा को देखकर, सौंदर्य को देखकर विमुग्ध हो गए, कहे कि मैं तो लक्ष्मी को कितनी बार दर्शन किया हूं, कहां वैकुंठ में, उमा को भी दर्शन किया हूं, इंद्र की पति सची को भी दर्शन किया हूं, उर्वशी आदि अप्सराओं को स्वर्ग में सभी को देखा हूं, लेकिन इसकी जो सौंदर्य है, इसके नाखून के भी जो ज्योति है उससे भी उनकी सौंदर्यता पराभव प्राप्त करता है। यही निश्चित रूप में गोरखेश्वरी श्री राधा ही है। ये सोचकर उन्होंने ब्रुषभान को कि इनसे एकांत में मैं कुछ स्तुति करना चाहता हूं, सोचकर उन्होंने ब्रुषभान को कुछ भेज दिए सामने से बाहर, कह के थोड़ा मेरे लिए कुछ लाइए, कुछ फॉर मोल बा कुछ लाने के लिए उनके आतिथ्य के लिए कुछ बहाना करके उन्हें बाहर भेज दिए, और तुरंत ही एकांत में बहुत सुंदर स्तुति करने लगे। पद्म पुराण में वर्णन है तो नारद जी ने जब बहुत सुंदर स्तुति करने लगे, राधारानी प्रसन्न हुई, प्रसन्न हो गई। नारद जी की जो इच्छा था कि इनकी मूल रूप किशोरी रूप को दर्शन करने के लिए, राधारानी ने किशोरी रूप में प्रकट हो गए। 14 साल 8 महीने इनके नित्य स्वरूप है, उसी किशोरी रूप में प्रकट हो गए, साथ साथ अष्ट सखी भी प्रकट हो गए। अष्ट सखियों के साथ में नारद जी ने राधारानी को दर्शन किए। नारद जी ने बड़े भाव विभोर होकर रो रो कर बहुत स्तुतियां गाने लगे, और सखियों ने कहे कि नारद जी तुम्हें बड़े भाग्यवान हो, तुम आज हमारा सखी को सखी तुम बड़े प्रसन्न होकर ये किशोरी रूप तुमको दर्शन कराई, और इसी रूप में फिर तुम हमको हम दर्शन करोगे। कुसुम सरोवर के पास में एक अशोक वृक्ष है जिसमें पर सावन पूर्णिमा का दिन हम फिर आपको दर्शन देंगे कि इस जब राधारानी फिर उसी वयस को प्राप्त करेगा, नित्य किशोरी वयस को 14 साल 8 महीने की उम्र में फिर आपको दर्शन देगी, उस तब तक आप प्रतीक्षा करो। अभी किशोरी वयस राधारानी का अंतरित होने वाला है, आप अच्छे तरफ से इनको दर्शन कर लो और स्तुति प्रणाम जो करना समाप्त करो। तो कहकर राधा नारद जी इनको प्रणाम करते ही फिर वो छोटे बच्चे के रूप में फिर झूले पर रह गई। इसलिए नारद जी ने बड़े प्रसन्न होकर राधारानी की बुरी बुरी प्रशंसा करकर आंख से अश्रु बह रहा था, ब्रुषभान तब दर्ज में आ गए थे, देख रहे थे ये क्या कर रहे मेरे लड़की लाली को, कुछ बोल रहे हैं ऐसे ही, और आंख से इनके अश्रु रो रहे, क्या हो गया नारद जी को, कह नारद जी क्या हुआ, आप रोना शुरू कर दिया, आंख से अश्रु बह रहा, मेरे क्या क्या बोल रहे हैं मेरे बच्ची को है? तो बोले गए नहीं सब ठीक ठाक है, तुम बड़े भाग्यवान हो, ऐसे ही बच्ची तुमको प्राप्त हुई है, इनको बहुत अच्छे से लालन पालन करो। लेकिन ब्रुषभान जी कहके कि ये तो अंधी है, उसकी तो नहीं, वो समय आने पर वो आंख खुलेगी, चिंता मत करो, वो अंधी नहीं है। तो ब्रुषभान को थोड़ा आश्वस्त मिले। लेकिन जब ब्रुषभान के घर में बच्ची का जन्म हुआ, खबर मिला था नंद भवन में, खबर मिल गया माँ ने, तभी नंद जसोदा अपने लाला को लेकर पहुंच गए क्या ब्रुषभान के घर में, अच्छे संपर्क था दोनों में, इसलिए पास पास में रहते थे, वो गोकुल में रहते थे, राल में रहते थे, बरसाना में रहते थे, वो नंद बाबा रहते थे कहा नंदगांव में, 6-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूरी पर हमेशा रहते थे। तो इसलिए वो अपने बच्चे लाला को कन्हैया को लेकर आ गए नंद और जसोदा अपनी लाली को, इनकी लाली को नवजात शिशु को देखने के लिए। आकर जो पहुंच गए तब ये दोनों तो स्त्रियों की बात माने स्वभाव पर बातचीत करने तुरंत बातचीत करने में लग गए, कौन जसोदा और कीर्तिदा, नंद और ब्रुषभान वो भी अपने बातचीत में लग गए, लेकिन ये तो अपने मां की और से बार बार नीचे फिसल गए, कौन उतर गए कन्हैया, ऐसे ही थोड़ा गुंटे में गए, ऐसे जाते जाते झूली में झूल रही थी राधा, उसके साथ जाकर झूली का ऐसे रस्सी को पकड़कर देखने लगे किसको, तो राधा रानी समझ गए ये मेरे प्रियतम आ गए। तो भी उन्होंने आंख खोल के देखने लगी और दोनों को देखकर हंस रहे थे, खिलखिले और हंस रहे थे। ये देखकर उन्हें ब्रुषभान ये तो कृतिता बात कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा बात बच्चे जैसे हाँ हंसते तो थोड़ा बातचीत भी करते हैं, तो शब्द सुनाई पड़ा, बोले कि अरे क्या हो रहा है उधर, देखे कृतिता देखे कि अरे मेरे लाड़ी की तो आंख खुल गई है, वो देख रही है तुम्हारा लाड़ा को, हंस रही है, वो तुरंत उठा ली, बड़े प्रसन्न हो गए कि जसोदा तुमने आया तुम्हारा लाला को देखकर ही मेरे लाली की आंख खुल गई है, बड़े भाग्यवान है, तो बड़े उत्सव मनाए। लेकिन इसकी कहानी और दूसरे प्रकार की अन्य कई पुराण में लिखा गया कि प्रकृत में जसोदा जब लेकर आई लाला को, लाला तो लाली आई लेकिन ब्रुषभान जो कन्या को देखी झूले में झूले के ऊपर, तो उन्होंने अपने पुत्र को रखी थी, मैंने कन्या को नीचे उतारकर उसको ले ली ऊपर, कन्या अपने गोद में लेनी किसको, राधा को। ये देखकर कन्या रोने लगी जोर जोर से, पेट को पटकते हुए जमीन पर गड़ा देना, रोने लगे, साड़ी को पकड़कर खींचना, फिर जसोदा ने इनको भी उठा लिया। दो का दो हाथ में दोनों को पकड़े, एक में कौन कृष्ण एक में राधा, और बच्चों के स्वभाव है एक दूसरे को देखने एक दूसरे के शरीर को टच करना चाहते हैं, तो इसलिए कृष्ण ने टच करने लगे किन के शरीर को, राधा के शरीर, बार बार अंगुली ऐसे ही उनके शरीर में लगा, इनके आंख में भी ऐसा लगा दिए, तो समझ गई राधा की ये मेरे प्राणतम माने प्रियतम है, अंग इनके स्पर्श करते हैं तो राधा रानी की आंख खोल गई, इसलिए एक दूसरे को देखने लगे कौन राधा और कृष्ण। इस प्रकार भी इस प्रकार राधा रानी की आंख खुल गई, जब राधा रानी की आंख खुल गई तो उनकी घनिष्ठता मित्रता और घनिष्ठ हो गया, किनकी ब्रुषभानु और नंद और जसोदा और कीर्तिदा में तिथि बढ़ गई, और बाद में तो कन्या को लेकर आ गए अपने घर में वापस करने के लिए, थोड़े देर के बाद अन्न प्रसन्न प्रसन्न की पहले जो अन्न खिलाते किसको बच्चे को, समय आ गया बच्चे को सबसे पहला अन्न खिला जाएगा, तो अन्न प्रसन्न के दिन बहुत प्रकार का फिस्ट बना और बच्चे को सबसे पहले खीर खिलाते हैं मुख में देते हैं, लेकिन बच्ची मुख नहीं खुलती बंद करके रखी है, क्योंकि वो चाहते थे कि क्या खाने के लिए कृष्ण की झूठन, तो इसलिए नंद बाबा भी अपने लाला को लेकर आए थे जसोदा के साथ, जसोदा तो कृष्ण को के लिए पत्ता भी डाल दिया, एक छोटा पत्ता भगवान के कन्या के सामने भी खीर रख दिया उसमें, राधा राधा भी बैठी थी लेकिन राधा खाया नहीं थी इतने मुख, लेकिन जब कृष्ण के हाथ में खीर दे रहे थे कृष्ण खाना लगे, कृष्ण दो चार बार खाने लगे तो राधा रानी ने हाँ वहां से घूमकर उसी पत्ता में लेकर तुरंत मुख में डाल दी, अर्थात सबसे पहला अन्न प्राशन मैंने खाने के लिए किसके प्रसाद खाए हैं कृष्ण प्रसाद को ग्रहण किए, सबसे पहले कृष्ण को देखे कृष्ण के प्रसाद खाए, तो आस्ते आस्ते मैंने कई सुंदर लाए हैं लेकिन टाइम 15 मिनट बाकी है, अभिषेक होने वाला है 10-12 मिनट है, तो इसलिए और एक दो लड़ा कहेंगे बचपन की जो राधारानी आस्ते बढ़ते बढ़ते और बड़े हो गई, चार पांच साल की उम्र में, तो सारे उनके जो गोपियां लोग ने आसपास में ही सब घर है, ललिता विशाखा सब गोपियां अष्टगोपी पास पास में सब उनके जन्मस्थान था, तो सब आते थे आकर राधारानी के साथ में खेलते थे, सभी एकाठी वृषभानु की जो बारंडा में घर में कहीं कोने में बैठकर खेलते थे, उन्होंने एक कृष्ण की एक डेटी उनको बना देते थे, कन्या के डेटी बनाकर और उसको फूल में सजाते थे, पूजा करते थे, आरती करते थे, ऐसे खेलते थे, वो खेलते खेलते एक दिन नारद वहां गए द्वादशी मैंने एकादशी व्रत करके द्वादशी पालन करने के लिए दुर्वासा मुनि पहुंच गए, कहा ब्रह्मान के घर में पालन करने के लिए किसी घर में आप तो आके पहुंच गए, देखिए बच्चे लोग खेल रहे थे, दुर्वासा को देखकर सारे भाग गए, सारे डर कर भाग गए, दाढ़ी बा मैंने बड़े बड़े दाढ़ी देखिए भाग गए, लेकिन राधा रानी नहीं गई, रानी बैठी थी बड़े शांत भाव से बैठी रही, और दुर्वासा आए थे मथा नीचे करके इनको प्रणाम की, दुर्वासा दिख रही लगे ये कन्या वृषभानु की दुलारी इतनी सुंदर ही है, वो भी सोचने लगे नारद जी की तरफ, ये तो वैकुंठ की लक्ष्मी को देखा हूं, परमा को देखा हूं, सची को देखा हूं, इतने सारे स्वर्ग की देवा देवियों को देखा हूं, लेकिन इसकी सौंदर्य के साथ किसी की तुलना नहीं की जा सकती है, ये निश्चित रूप में गोलेश्वरी है, लेकिन आश्चर्यचकित होकर दुर्वासा ने अपने मन से मन उनको प्रणाम करते हुए, लेकिन आए थे तो द्वादशा पालन करने द्वादशी का पालन करने कही कि अरे लाली तुम तो ऐसे नकली खीर खा, मैंने वो लोग ने खाना बनाकर भी ऐसे नकली कृष्ण को अर्पण करते पूजा करते, तुम मेरे लिए थोड़ा खीर बना के दे सकती हो, ऐसे दुर्वासी मैं पालना करना चाहता हूं द्वादशी का, मेरे लिए थोड़ा खीर बना के दे दो, ये बात को सुनते ही राधारानी खड़े होकर भाग ले गई, दौड़ते दौड़ते गई अपनी मां के पास, कर लाली मां मैं खीर बनाऊंगी, खीर बनाऊंगी लाओ सोसा बंजाम लाओ, अरे तुम खीर हाँ मैं बनाऊंगी लाओ, तो मां ने सब आग्रह के सुनकर सब खीर बनाने के सारे सामग्री ले आई, दूध चावल और शक्कर इलायची जो कुछ भी सारे सारे काजू किशमिश जो कुछ डालना है सब खीर के सरंजाम लेकर दे दी, राधारानी ने बैठकर बहुत सुंदर खीर बना दी, बच्चे खीर रेडी करके प्रस्तुत करके थोड़ा सा ठंडे होने पर हैं इनको अर्पण की, किनको दुर्वासा को आसन में बैठा कर इनको खीर भोजन कराए, दुर्वासा ने जो खीर को स्पर्श कर रहे अपने मुख में स्पर्श करे जीवा में उसके स्वाद को जब उन्होंने चखा तो उन्होंने सोचा कि इनके शरीर पूरा रोमांचित होने लगा, अष्टसती विकास होने लगा, समझ गए ये खीर भौतिक जगत के नहीं है, ये जो कुकिंग करने वाली लड़की है साक्षात गोरखेश्वरी है, साक्षात राधा है, नहीं तो दूसरे ऐसा खीर नहीं बना सकते। ऐसा समझते हुए प्रणाम करते हुए राधा रानी को मंत्र में प्रणाम करते हुए बड़े प्रसन्न चित्त में जब खीर को आस्वादन किए, इसकी बात में कही कि लाली तू मुझे खीर खिलाओ, मैं बड़े प्रसन्न हो गया है, इसीलिए तुझे वरदान देता हूं, तुम कुछ भी बनाने के लिए जाओगे, कुकिंग करने जाओगे, कोई भी वस्तु को तुम स्पर्श करोगे वो क्या बन जाएगी, अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट बन जाएगी, और जिस तुम्हारे हाथ की बना हुआ जो खाना जो भी खाएगा उसके शरीर में किसी प्रकार की रोग व्याधि नहीं आएगा, वो चिरंजीवी भी हो जाएगा, वो समस्त प्रकार के क्लेशों से भी मुक्त हो जाएगा। ऐसे कहकर बहुत सुंदर वरदान दिए और इस बात फैल गया सारा ब्रज में, उनको भी पता लग गया। किनको किनको पता लग गया? नंद यशोदा को पता लग गया कि दुर्वासा ने राधा को से वरदान दिए, तो उन्होंने तुरंत कीर्तिदा के पास आकर पहुंच गए। यशोदा कहे कि तुम्हारे लाली हमारे लाला के लिए कुकिंग करेगा, तो हमारे सारे ब्रजवासी लोग कृष्ण को बहुत अच्छा समझते थे, प्रेम करते थे, इसलिए बाद में राधा रानी की शादी भी हो गया था जावट में अभिमन्यु के साथ, तभी भी फिर वहां पर जटला के साथ में भी बोले कि तुम्हारे ये बधू ही हमारा लड़का के लिए शादी करे, नहीं सॉरी कुकिंग करेगा, नन करेगा और राधा की कुकिंग खाएगा तो हमारा कृष्ण हमेशा है सुस्त रहेगा, सबल रहेगा, राक्षसों के साथ में लड़ाई करके भी माने अपने पराक्रम की बल पर उनको परास्त कर देगा, ये आप कृपा करके ये मुझे मेरे ये विनती को स्वीकार करो। इसलिए हमेशा कृष्ण के लिए राधा रानी कुकिंग करती थी और दुर्वासा के वरदान इसके लिए एक माध्यम बन गए। तो इसलिए प्रत्येक दिन आती थी राधा रानी, आती थी अपने जब नंद भवन में गोकुल में थे तो यहां से वो रावल में जाती थी गोकुल, यहां पर जब नंदगांव से फिर जाती थी कहां बरसाने, तो एक पास्टर थे तो वही जो राधा रानी की जो कुकिंग तो कुकिंग करने के लिए एक बार राधा रानी प्रत्येक दिन कुकिंग करने आते, राधा रानी की गुण और सभी चरित्र को देखकर मां जशोदा हमेशा मन से सोचती थी कि यही जो कन्या है ये मेरा कृष्ण का ही क्या है, कृष्ण के साथ इसी को शादी कराऊंगा। बात में दोनों भी चाहते थे, ब्रसवानु और कीर्तिदा भी चाहते थे, नंद और जशोदा नो भी चाहते थे कि ये दोनों का शादी हो जाए, किनके? कृष्ण और राधा रानी की। इसलिए एक दिन राधा रानी जब आए थे जशोदा के भवन में कुकिंग करने बाद, मां जशोदा को प्रणाम करे थे, मां जशोदा ने क्या किया, टर्मेरिक पाउडर हल्दी से ही बड़े तो हल्दी पाउडर कुछ लेकर ऐसे ही बटा हल्दी इनकी हाथ में लगा दी, किनकी? राधा रानी की। ये प्रथा था कि इसका अर्थ है कि वो उस लड़की को अपने पुत्र के साथ शादी कराना चाहती। राधा रानी समझ गई, बड़ा शर्म गई, मन से बड़े दुखी हो गए, हमने तो खुश हो रही थी लेकिन मुख नीचे करते हुए ऐसे ही हल्दी जब लगा भाग गई वहीं से, भागते भागते आकर कहां पहुंची, बरसाना में है, बरसाना पहुंचकर पीली पुखर है जहां पर राधा रानी ने हाथ धोई थी, सभी गोपियों को पता लग गया, सब लोग बड़ा खुश हो गए, इस खुश हो गए हाथ धोते, राधा रानी वहां पर हाथ धोई और वो जो तालाब की पानी कैसे हो गया पीला, आज भी उस तालाब के नाम है पीली पुखर, पीली हो गया। और इस खबर मिल गया गोपियों के माध्यम से, उनके सखियों के माध्यम से इनको मिल गया, किनको? ब्रजभानु कीर्तिदा को। बड़े खुश हो गए, उन्होंने खुश हो गए, तुरंत ही इसकी सम्मति इनके तरफ से है, इसलिए उन्होंने एक सोने की प्लेट माने बास्केट में हीरा लीला मोती माणिक्य से भरकर भेंट के रूप में नंद भवन को भेज दी। नंद भवन नंद पहनी मां जशोदा जो भी उस बस्केट को खोली, इसको पेटा नहीं है, इसको खोली तो उसके अंदर देखी कि इतनी सारे हीरा लीला मोती माणिक्य से भरा हुआ है, तो ये कहे कि ये प्रथा है कि वो तो जितनी भेजी है उससे दोगुणा वर पक्ष में कन्या पक्ष को भी भेजना चाहिए, कहां से आएगी हमारे घर में इतनी तो नहीं है, अभी कहां से भेजेंगे, बड़े चिंतित हो गई मां जशोदा। नंद कन्या ने आरोप कि क्या हो गया माताजी, क्या सोच रही है इतने, क्या है ना, बोलो हमको, बोले देखो इतनी सारे हीरा ये दिए हैं कौन, ब्रसवानु जी ने अरे हमें इसका दुगुना देना पड़ेगा, हमारे घर तो इतना नहीं है, क्या करेंगे? तो बोले कि ये जितने भी रखे मेरे को दे दो, मैं इसका व्यवस्था करूंगा। तो इसलिए कृष्ण ने इसको कह के बलराम जी को बोले कि भाई थोड़ा कसन कर दो, हिले हल हल के लगाकर ये सब जमीन थोड़ा खेती बना दो और इसको मैं बोऊंगा सब। ये महाराज कह रहे तुम पागल हो लोग नहीं, तुम धरती धारण करो। इसलिए भगवान ने इसको सब ले सर कन्या ने लेकर सब बो दिए और उसी से पेड़ निकाला सब। किसके हैं? रत्न हीरा लीला मती माणिक के पेड़ से हुआ और उसमें मती माणिक से झूलने लगे। हैं कि माँ पिताजी ने माता जी पिताजी कितने लेना ले लो तो फिर वो ये अद्भुत कर्म को देखते हुए बड़ा आश्चर्यचकित हुए क्योंकि उनको गर्गमुनि ने भी पता था है? ये नारायण सम पुत्र इनकी है। गर्गमुनि कहे थे कि आपके जो पुत्र है ये नारायण सम इसकी कीर्ति बढ़ेगी। तभी नंद बाबा ने इसको स्मरण करके थोड़ा फिर शांत हो जाते थे। अच्छा ठीक है इसके लिए असंभव नहीं है। तो हीरा लाला मत ये सब तोड़कर फिर वृषभवन के घर में वापस भेज दी। ऐसा ही जब विवाह का समय हो रहा था प्लान चल रहा था लेकिन पूर्णमासी देखे कि ये अच्छा नहीं होगा, ये पति पत्नी के रूप में यदि राधा कृष्ण रहेंगे तो लीला आस्वादन ठीक से नहीं होगा। इसलिए पूर्णमासी ने बीच में कहे कि अभी शादी का अवलोकन डेट फेट फिक्स कर देते। पूर्णमासी ने कहे कि तुम मुझे बिना पूछे कैसे कर दिए हो? तो वो लोग ने जो कुछ काम करते पूर्णमासी से सलाह लेकर, पूर्णमासी देवी जोगमाया देवी है और उनसे भविष्य जानती है, बड़े ज्योतिष के रूप में सब ब्रजवासी लोग विश्वास करते हैं कि ये जो बोलती है वो सच होती है। इसलिए पूर्णमासी देवी कहे कि देखिए कुछ ऐसा ही बैठकर झूठा कैलकुलेशन करी कहे कि देखो अभी लग्न ठीक नहीं लग रहा है, ये लग्न ठीक नहीं है, अगर से पूर्व इसी लग्न में शादी कराओगे तो ये ज्यादा दिन साथ में नहीं रह सके, फिर बिछड़ जाएंगे, झगड़ा झाटी होगा, ये नहीं, और थोड़ा दिन बाद कभी दूसरे फिर शादी कराए। दूसरे दिन शादी बंद करा दी। अब बंद कराकर पूर्णवास ने फिर वो इनका विवाह करा दी। किससे है? किससे शादी करा दी? अभिमन्यु से है? किसके पुत्र वो? उनकी माताजी और बहन का नाम सबको प्रसिद्ध है, बड़े सब लोग जानते हो। माताजी है कौन? जटिला और राधारानी के ननंद है कुटिला, बड़े प्रसिद्ध है दोनों का कीर्ति के लिए। और जटिला के पुत्र के साथ अभिमन्यु के साथ तो केवल नाग की पति था क्योंकि इसको रात में कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। उड़ीसा का कहते कि चंद्र सड़ा अंधारा कणा, अंधार कणा माने अंधार में उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। उसके अभिमन्यु के दूसरे नाम है चंद्रसेना, तो उसको रात में कुछ शाम हो जाता तो रात में कुछ दिखाई नहीं पड़ता वो, और दिन में भी गाय चरण में रहता था, कहा जंगल में गाय लेके जाता था, उसे व्यस्त रहता था अपने काम में, शाम को घर में आते ही अंधा हो जाता था, उसको दिखाई नहीं पड़ता था। इसलिए कृष्ण ही उनके पति रहे लेकिन परकिया भाव से, परकिया भावे जहा भजे थे जय जय उज्ज्वल रस सर्वरस सार परकिया भावे जहा भजे थे प्रचार। इसलिए पूर्णमासी के जो विचार के आधार पर, उन्हीं के प्लान के आधार पर फिर ये परकिया भाव से राधा कृष्ण परस्पर से मिलते थे। यदि वो इटरनली वो ही नित्य गोल वृंदावन धाम में ही वो नित्य प्रिय और प्रेयसी के रूप में राधा कृष्ण के रूप में रहते हैं, नित्य प्रेयसी। लेकिन भोपाल लड़ा पर उन्होंने इसी रस को आस्वादन करने के लिए पूर्णम जोगमाया देवी की प्लान से ही ऐसे ही बन गए, ये अभिमन्यु की पत्नी बन गई राधा और कृष्ण फिर उनके साथ में भिन्न भिन्न उपाय से मिलते थे। समय हो गया और कुछ हम जो शाम की क्लास होगा पांच से सात फिर क्लास होगा, उस क्लास में और कुछ वर्णन करेंगे कथा। ठीक है, हरे कृष्ण। पांच से सात फिर क्लास होगा शाम को। जय